हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दैत्यराज नर्क का राजा है और वो भी विक्रांत की तरह ही अलग अलग शक्तियों को पाने की फिराक में लगा रहता है, जिससे कि वो शैतानी दुनिया का बादशाह बन पाए। और पहले उसे विक्रांत के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से बता देना तब से वो विक्रांत को अपने रास्ते से हटाकर उसकी सारी शक्तियां भी पाना चाहता है। विक्रांत को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और विक्रांत खुद को हमेशा ही उसे ऊंचा मानता है। इसलिए अभी भी विक्रांत को लगा था कि वो उसे आसानी से हरा देगा, जैसे कि उसने प्रेत और चुड़ैलों को हरा दिया। लेकिन आज पहली बार ही जिंदगी में उसका दैत्यराज से सामना हो रहा है, इसलिए विक्रांत ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो उसे पर भारी पड़ेगा। उसे बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था और उसने दैत्यराज को भी हल्के में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मेरी मर्जी के बिना कोई भी यहाँ इस जगह पर मेरे इलाके में दूर दूर तक कम नहीं रख सकता। और तुम जो कोई भी हो, दैत्यराज हैं जो विक्रांत के रास्ते से नहीं, तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। विक्रांत फिर से उसी तरह गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, पछताओगे तो तुम विक्रांत, वो भी बहुत बड़ा पछताओगे, क्योंकि जो सपना तुम देख रहे हो दैत्यराज के रहते, तुम्हारा तो वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि शैतानी दुनिया पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, सिर्फ मेरी, और तुम्हारा अलग काला साम्राज्य में कभी बसने नहीं दूंगा। इतना बोलते हुए वो भयानक दिखने वाला आदमी विक्रांत की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उसकी आंखों से समझ आ रहा है कि वो विक्रांत का मजाक उड़ाते हुए उसे पर हंस रहा है, जिस पर विक्रांत को बहुत ही तेज गुस्सा आए और वो एकदम ही उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन तभी विक्रांत को अपने सीने पर आकर लगता हुआ एक बार महसूस हुआ और एकदम ही झटके से विक्रांत अपनी जगह से काफी कदम पीछे हो गया। नहीं नहीं, मुझे हो सकता, तुमने मुझ पर वार, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। विक्रांत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्योंकि उसे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा ताकि उसके सामने खड़े उस दैत्यराज ने उसे पर हमला किया, जिसकी वजह से विक्रांत अपनी जगह से इतना दूर चला गया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार डर लगा, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों पर उसने हमला किया है, एक वार से ही वो उन्हें आसानी से खत्म कर देता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों की उम्र और शक्तियां भी उसे मिल जाती थी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जितने भी लोगों को उसने मारा है, उन सब की कुछ ना कुछ शक्तियां और गुण सब उसके अंदर आ गए हैं। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, उसका वार खाली गया, यहां तक उसे वार करने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले ही किसी ने उसे पर पलट वार कर दिया। ये बात सोचकर ही विक्रांत को गुस्सा आया और उसने उसी तरह उसे भी लाल आंखों के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन वो दैत्यराज उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, इस तरह से जैसे कि उसके आगे विक्रांत कुछ भी मायने ना रखता हो। वो फिर से वसुंधरा की तरफ आगे बढ़ा, जो कि उस जगह के एक कोने में एकदम दुबकी हुई सी खड़ी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ और उसके सामने ये सब हो क्या रहा है। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे पर हमला करने से पहले उसने वसुंधरा और दैत्यराज के बीच एक कवच सुरक्षा गिरा जैसा बनाया, जैसे कि कोई भी पार नहीं कर पाएगा। दैत्यराज को सामने बनता हुआ वो कवच नजर आया, लेकिन उसे लगा कि वो आसानी से इस कवच को पार कर जाएगा, इसलिए उसने विक्रांत को नहीं रोका। और जब वो रक्षा कवच के एकदम नजदीक पहुंचा और उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, तो उसे अपने पैर में एक तेज झटका लगा और वो तुरंत ही वहां से पीछे हो गया। उसे इस तरह से पीछे होते देख विक्रांत के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कुराहट आ गई। दैत्यराज वो सब समझने की कोशिश करने लगा और विक्रांत ने इस बात का फायदा उठाते हुए पीछे से उसे पर हमला किया, और वो हमला सीधा उसके सिर और कंधे के बीच गर्दन पर किया, जो कि किसी भी काली शक्ति का सबसे कमजोर हिस्सा होते हैं। और विक्रांत को ये बात सबसे अच्छी तरह से पता थी, इसलिए उसने सीधा वहां पर हमला किया और उसे हमले से उसकी गर्दन पर एक गहरा जख्म हो गया और वो वहां जमीन पर गिर गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए विक्रांत तुरंत ही आगे आया और उसने अपना पर उसे दैत्यराज के सीने पर रखकर उसे कसकर जमीन पर दबाते हुए कहा, यहां आने से पहले सोचा था तुमने कि कुछ देर के बाद तुम विक्रांत के कदमों में होगे। इतना बोलते हुए विक्रांत ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है, वो भी इस बात को लेकर कि वो जो कोई भी है, आखिर उसने विक्रांत के सामने खड़े होने और उसे ललकारने की हिम्मत कैसे की। अपने सामने चल रहे उन सब ड्रामा को देखकर वसुंधरा अपने आप से ही बात करते हुए बोली, क्या चल रहा है ये सब, कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं कब निकल पाऊंगी यहाँ से। इस बीच उसने वहां से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसे घर से बाहर नहीं निकल पाई जो कि विक्रांत ने उसके और दैत्यराज के बीच बनाया था, जिसका मकसद दैत्यराज को रोकना और वसुंधरा की सुरक्षा भी था। इसलिए वसुंधरा थक कर वहीं वापस कोने में ही चली गई। दैत्यराज के सीने पर अपना पैर रखते हुए विक्रांत ने उसे और कस कर दबाया। दैत्यराज विक्रांत का पर अपने सीने पर से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी कोई भी ताकत कम नहीं कर रही है और विक्रांत उसे पर हाँ भी होता जा रहा है। तो फिर दैत्यराज के पास और कोई चारा नहीं बचा। उसने अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा और अपनी आंख बंद की। फिर वो एक पल में ही वहां से गायब हो गया, ऐसे जैसे कि हवा में मिल गया हो या फिर वहां पर कोई कभी था ही नहीं। दैत्यराज के वहां से गायब होते ही विक्रांत का पैर भी एक झटके में ही जमीन पर आ लगा, क्योंकि विक्रांत थोड़ा सा लड़खड़ा गया और फिर उसने देखा तो वो वहां से गायब हो चुका था। और इस बात पर विक्रांत ने और गुस्से में कहा, भाग गया डरपोक कहीं का। इतना बोलते हुए विक्रांत ने वहां पर चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर कोने में एकदम डरी सहमी हुई सी खड़ी वसुंधरा की तरफ पड़ी। वसुंधरा को इस तरह से देखकर विक्रांत उसकी तरफ ही बढ़ा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो बीच में ही रुक गया और वहां से मुड़कर सीधा उस जगह से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ राजकुमार समर को ढूंढने के लिए चंद्रिका और वीरेश उसे गुफा की तरफ वापस आए। चंद्रिका सच में राजकुमार के लिए परेशान है, लेकिन वीरेश इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि इन सब में उनका समय बर्बाद हो रहा है। उसे लगा था कि एक दिन में वो लोग वसुंधरा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी समर जो कि उनके साथ वसुंधरा को ढूंढने निकला था वो खुद ही खो गया है और उसे ढूंढने में अब उनका सारा समय और ऊर्जा जा रही है। इसलिए वीरेश बहुत ही ज्यादा नाराजगी से बोला, हम राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकले हैं या फिर राजकुमार को? वीरेश का ये सवाल सुनकर चंद्रिका अपनी जगह पर ही रुक गई और उसने पलटकर वीरेश की तरफ देखा। चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे कि उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जो कुछ भी उसने सुना है वो इसलिए उसने हैरानी से वीरेश की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम वसुंधरा को ही ढूंढने के लिए निकले हैं, ये भी कोई बोलने की बात है? और राजकुमार तो बस परिस्थितियों में।
हाँ हाँ ठीक है, पता है पता है, मुझे भी पता है। चलो जल्दी से हमारे साथ आओ, हमें फिर से गुफा के अंदर जाना होगा और तुम इस बार मेरे साथ ही रहना। मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ हो और मेरा समय बर्बाद हो, वीरेश ने बहुत ही ज्यादा बेरुखी से कहा। और फिर वो चंद्रिका के साथ वहां उसे गुफा के अंदर आया। गुफा के अंदर आते ही वीरेश ने अपने हाथ को आगे की तरफ किया और फिर उसके हाथ से वहीं सुनहरी रोशनी निकली, जिससे कि उसे अंधेरी काली गुफा में भी कुछ रोशनी हो गई, लेकिन उसे रोशनी में उन्हें ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद्रिका ने तेज आवाज में उसका नाम लेते हुए कहा, राजकुमार, राजकुमार समर, कहाँ हैं आप? क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? उसके इस तरह से तेज आवाज में चिल्लाने पर वीरेश ने तुरंत ही उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसी क्यों चिल्ला रही हो, यहां पर नहीं है, और अगर तुमने ज्यादा तेज चलाया तो फिर यहां पर खतरा हो सकता है, क्योंकि सबको हमारे यहां होने के बारे में पता चल जाएगा। और इसके अलावा, इसके आगे वीरेश कुछ भी बोल पाता तभी उसे एक चट्टान दरकने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया था कि आवाज की वजह से उसे गुफा का भीतरी हिस्सा जरूर कमजोर होकर इधर उधर गिरने वाला है, लेकिन वो खुद वहां पर फैसला नहीं चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही चंद्रिका की तरफ आता हुआ उसे चेतावनी देते हुए बोला, देख लो मेरी बात ना माने का नतीजा, अब अगर कुछ हो जाए तो मुझे दोष मत देना। इतना बोलते हुए उसने अपने हाथ खड़े कर लिए तो चंद्रिका ने ऊपर से नीचे तक उसे एक नजर देखा और गुस्से में बोली, क्या देखूं मैं, तुम दोनों की ये लड़ाई मुझे इसमें जरा सीधे दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस राजकुमार समर को ढूंढना है और मुझे लगता है वो यहां पर ही कहीं है। इतना बोलते हुए बिना किसी डर खौफ के चंद्रिका उसे गुफा में और भी ज्यादा अंदर की तरफ बढ़ी और तभी उसे अपने पैर में कुछ लड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो वहां पर समर मुंह के बल एकदम बेहोश पड़ा था, उसके सर से खून निकल रहा था। चंद्रिका नीचे जमीन तारीख ही बैठ गई और राजकुमार समर को हिलाकर होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समर अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ। तो फिर वीरेश ने आगे जाकर उसे गोद में उठाया और शक्तियों के बल पर उसने समर को बहुत ही आसानी से उठा लिया, जबकि वो दोनों लगभग हम उम्र ही लग रहे हैं और दिखने में कद काठी भी लगभग एक जैसी ही है, यहां तक कि दोनों का वजन भी लगभग बराबर ही होगा। वीरेश राजकुमार समर को इस तरह से उठाकर वहां गुफा से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी चट्टानों के चिटकने की तेज आवाज की वजह से वो यहां पर ही रुक गया। लेकिन चंद्रिका का पूरा ध्यान राजकुमार समर में लगा हुआ था, इसलिए वो आवाज से वह नहीं सुन पाई और वीरेश की तरफ आते हुए बोली, क्या हुआ है? राजकुमार को उनके सर से इतना खून निकल रहा है, तुम कुछ करते नहीं और मुझे बताओ राजकुमार यहां पर बेहोश कैसे हो गए? क्या है उनके साथ, किसी ने कुछ? ये बात चंद्रिका ने फिर से इस तरह से तेज आवाज में बोली और वीरेश उसकी इस बात का कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा ऊपर से टूटकर उन दोनों के एकदम सामने आकर गिरा। और अगर अबघा कुछ देर पहले थोड़ा सा पीछे ना हुआ होता तो ये बड़ा सा पत्थर उन तीन लोगों पर ही आकर गिरता, उनमें से किसी के सर पर क्रमशः। क्या दैत्यराज को जिंदगी का सबक मिल चुका है और वो दोबारा से वापस नहीं आएगा विक्रांत के रास्ते में? और समर को लेकर वहां से बाहर निकाल पाएंगे वीरेश? और कैसी जा रही है अब तक की स्टोरी? आज स्टोरी में क्या पसंद आ रहा है आप लोगों को बताइए कमेंट में।